एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनका जीवन, जिनकी कहानी सिर्फ विज्ञान की दुनिया तक ही सीमित नहीं है।
हाँ बिल्कुल, रिचर्ड फाइनमैन
और उनकी बहुत ही दिलचस्प आत्मकथा श्योरली यू आर जोकिंग मिस्टर फाइनमैन। ये किताब मतलब सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है।
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दुनिया को देखने का, जीने का एक खास और सच कहूँ तो काफी मजेदार अंदाज दिखाती है।
रिचर्ड फाइनमैन थे कौन, थोड़ा बताएं?
रिचर्ड फाइनमैन वो 20वीं सदी के अमेरिका के बहुत ही जाने माने सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे, असाधारण प्रतिभाशाली।
नोबेल प्राइज भी मिला था उन्हें।
हाँ, 1965 में क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स यानी QED पर उनके काम के लिए जूलियन श्विंगर और सिन इचिरो टोमोनागा के साथ साझा किया था उन्होंने।
अच्छा।
और वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट का भी हिस्सा थे, परमाणु बम वाले प्रोजेक्ट का। बाद में चैलेंजर स्पेस शटल दुर्घटना हुई तो उसकी जांच करने वाली रॉजर्स कमीशन के भी सदस्य रहे। कैल्टेक में लंबे समय तक प्रोफेसर भी थे।
काफी उपलब्धियां हैं, लेकिन आज उनकी कहानी क्यों सुने, क्या है उसमें खास?
खास है उनका नजरिया। देखिए, उनकी कहानी सिर्फ अवार्ड्स या पदों की नहीं है, ये एक ऐसी जिंदगी की कहानी है जिसे किसी बाहरी दबाव या शोहरत की चाह ने नहीं चलाया।
तो फिर किसने चलाया?
उसे चलाया एक अंदरूनी आग ने, एक कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा, एक बहुत ही कट्टर किस्म की बौद्धिक ईमानदारी, और हाँ, नियमों को, सत्ता को चुनौती देने वाली एक चंचल, थोड़ी शरारती सी भावना ने।
अच्छा।
उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया को गहराई से समझना वो सिर्फ फैक्ट्स रटने से नहीं आता या डिग्री का सम्मान करने से नहीं,
बल्कि
लगातार सवाल पूछने से, एक्सपेरिमेंट करने से, खुद चीजों को देखने से, अनुभव करने से। हाँ, और तरीका भले ही थोड़ा अजीब लगे, अपरंपरागत हो।
और उनका व्यक्तित्व भी बड़ा रंगीन था। भौतिक विज्ञानी तो थे ही, पर साथ में एक अच्छे आर्टिस्ट भी थे, बोंगो ड्रम बजाते थे, तिजोरियां खोलने में माहिर थे, भाषाएं सीखते थे, शरारते करते थे।
बिल्कुल, मल्टी टैलेंटेड जिसे कहते हैं। और किताब की आवाज भी वैसी ही है, फॉर्मल नहीं, जैसे वो अपने दोस्त रैल्फ लिटन से बातें कर रहे हूं, बहुत एनर्जी है उसमें।
तो चलिए फाइनमैन के इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। शुरुआत करते हैं उनके बचपन से, न्यूयॉर्क के फेयर रॉकवे में। सुना है पिता का बहुत प्रभाव था उन पर।
हाँ, उनके पिता मेलविल फाइनमैन, कह सकते हैं कि उन्होंने ही फाइनमैन की सोच की नींव रखी। वो सिखाते थे कि किसी चीज का नाम जानना एक बात है और उसे समझना बिल्कुल दूसरी।
इसका कोई उदाहरण?
जैसे वो जंगल में ले जाते थे और कहते थे, देखो, इस चिड़िया का नाम जानना ठीक है, पर ये जानना ज्यादा जरूरी है कि ये चिड़िया ऐसा क्यों कर रही है, ये अपने बंक क्यों सहला रही है, ये उड़ती कैसे है। मतलब सिर्फ जानकारी मत इकट्ठी करो, उसके पीछे का क्यों और कैसे समझो,
गहराई में जाओ।
बिल्कुल, और ये निरीक्षण करने, सवाल पूछने की आदत फाइनमैन में हमेशा रही।
घर पे उनकी अपनी लैब भी थी जहां वो केमिस्ट्री के प्रयोग करते थे।
हाँ, और कहते हैं अक्सर वो प्रयोग बड़े गंध वाले होते थे और कभी कभी थोड़े विस्फोटक भी।
हाँ, और वो रेडियो वाला किस्सा भी तो मशहूर है कि वो खराब रेडियो को सिर्फ सर्किट डायग्राम देखकर, उसके बारे में सोचकर ही ठीक कर देते थे।
सही, ये दिखाता है कि वो प्रॉब्लम को ऊपर ऊपर से नहीं देखते थे, वो सीधे उसकी जड़ तक जाते थे, उसके मूल सिद्धांत, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल्स तक।
और ये अंदाज उनके कॉलेज के दिनों में भी जारी रहा, MIT और प्रिंसटन में। MIT की शरारतें तो काफी फेमस है, वो दरवाजे गायब करने वाली।
हाँ, वो सब मजाक नहीं था, वो एक तरह से सिस्टम को, नियमों को परखने का उनका तरीका था, मजे मजे में बौद्धिक चुनौती लेना।
और प्रिंसटन में हुई वो घटना जिसने किताब को नाम दिया श्योरली यू आर जोकिंग मिस्टर फाइनमैन।
हाँ, वो चाय पार्टी वाली, डीन की पत्नी ने पूछा, चाय में क्रीम लेंगे या नींबू? अब फाइनमैन को ये सब सामाजिक कायदे ज्यादा पता नहीं थे,
तो उन्होंने क्या कहा?
बड़ी मासूमियत से बोले, दोनों। सब हैरान रह गए। लेकिन ये घटना दिखाती है कि वो कैसे बिना लाग लपेट के स्थापित रिवाजों पर भी सवाल उठा देते थे, भले ही वो बचकाना लगे।
और ये सिर्फ सामाजिक नियमों पर नहीं था, प्रिंसटन में ही उन्होंने बायोलॉजी डिपार्टमेंट से पूछा था, क्या आपके पास बिल्ली का नक्शा है, मैप ऑफ द कैट?
हाँ, उनका मतलब था कि क्या शरीर के अलग अलग हिस्सों की जानकारी को जोड़कर एक पूरी तस्वीर, एक फंक्शनल समझ बनाई गई है। ये असल में अलग अलग अकादमिक विभागों के बीच तालमेल की कमी पर एक कटाक्ष था।
दिलचस्प। इसी दौरान उनकी मुलाकात आइंस्टाइन, पाउली, वॉन न्यूमैन जैसे बड़े वैज्ञानिकों से भी हुई।
हाँ, और वो उनसे डरे नहीं, एक बौद्धिक बराबरी के स्तर पर बात की।
फिर आया लॉस अलामोस का दौर, मैनहट्टन प्रोजेक्ट,
दूसरा विश्व युद्ध, परमाणु बम बनाने का सीक्रेट प्रोजेक्ट। वहां उन्होंने एक टीम लीड की जो जटिल गणितीय गणनाएं करती थी, उन्हें मानव कंप्यूटर कहते थे।
इतने गंभीर माहौल में भी उनकी शरारतें बंद नहीं हुई, वो तिजोरियां खोलने वाला किस्सा।
बिल्कुल, उन्होंने वहां रखी सेफ जिनमें गोपनीय दस्तावेज होते थे, उन्हें खोलना सीख लिया।
क्यों, सिर्फ मजे के लिए?
मजा तो था ही, लेकिन एक मकसद भी था। वो दिखाना चाहते थे कि ये जो सुरक्षा के इतने बड़े बड़े दावे हैं, वो असल में कितने कमजोर हो सकते हैं। ये भी एक तरह से सिस्टम की खामियों को उजागर करना था, अथॉरिटी को चैलेंज करना। और हाँ, एक मुश्किल पहेली सुलझाने का बौद्धिक आनंद तो था ही।
युद्ध खत्म हुआ, वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए, लेकिन वहां एक मुश्किल दौर आया उनके लिए।
हाँ, एक तरह का बर्नआउट कह सकते हैं। उन्हें लगने लगा कि शायद वो अब फिजिक्स कर ही नहीं सकते। वो मजा, वो खोज का रोमांच जैसे खत्म हो गया था, उद्देश्य समझ नहीं आ रहा था।
और यहीं पर वो डगमगाती प्लेट वाली घटना हुई जिसने सब बदल दिया।
एग्जैक्टली। एक दिन वो यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में बैठे थे, शायद कुछ उदास, खोए हुए। तभी देखा कि कोई प्लेट हवा में उछाल रहा है और वो घूमते हुए डगमगा रही है, वॉबल कर रही है।
अच्छा।
बस यूं ही खेल खेल में उन्होंने उसकी फिजिक्स समझनी शुरू कर दी, उसके घूमने और डगमगाने का गणित। और अचानक उन्हें वो मजा, वो किक जो खो गया था, वो वापस मिल गया।
कमाल है, एक मामूली सी प्लेट से।
हाँ, वो कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक सवाल नहीं था, बस एक खेल था। लेकिन उसी खेल ने उनके अंदर की रचनात्मकता को फिर से जगा दिया, उन्हें वापस उस रास्ते पर ले आई जिससे वो अपने नोबेल पुरस्कार वाले काम QED तक पहुंचे।
ये दिखाता है कि कभी कभी दबाव हटाकर सिर्फ खेल और जिज्ञासा से ही बड़ी खोजें हो जाती हैं।
बिल्कुल, आंतरिक प्रेरणा कितनी जरूरी है।
इसके बाद तो करियर ग्राफ ऊपर ही गया। 1965 में नोबेल, उनके फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स आज भी दुनिया भर में छात्र पढ़ते हैं।
हाँ, वो तो क्लासिक हैं। और बाद में रॉजर्स कमीशन में भी उनकी भूमिका अहम रही, चैलेंजर शटल दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में।
उनकी विरासत क्या है, सिर्फ वैज्ञानिक खोजे?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा। उन्हें महान व्याख्याता या द ग्रेट एक्सप्लेनर कहा गया। वो मुश्किल से मुश्किल आइडियाज को भी बहुत आसानी से समझा सकते थे।
हाँ, ये काबिलियत तो थी उनमें।
और उन्होंने ये दिखाया कि टैलेंट कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, ये लगातार मेहनत, विनम्रता और खुशी खुशी सीखने का नतीजा है। कोई भी इसे विकसित कर सकता है, और उनकी विरासत है बौद्धिक ईमानदारी पर उनका जोर, खासकर उनका कार्गो कल्ट साइंस वाला आइडिया।
कार्गो कल्ट साइंस, वो क्या था?
वो एक तरह की नकली वैज्ञानिकता की आलोचना थी, जैसे कुछ आदिवासी नकली हवाई पट्टी बनाकर असली हवाई जहाजों को बुलाने की कोशिश करते थे, उसी तरह कुछ वैज्ञानिक भी सिर्फ प्रक्रिया की नकल करते हैं बिना असली समझ और ईमानदारी के। ये आज भी बहुत प्रासंगिक है।
चलिए, अब उनके मूल दर्शन और मूल्यों पर थोड़ी और बात करते हैं। सबसे पहले तो वो जिज्ञासा ही है ना, जो कभी खत्म नहीं होती थी।
हाँ, और वो सिर्फ फिजिक्स तक नहीं थी, वो हर चीज में थी। चीटियां अपना रास्ता कैसे ढूंढती हैं, ब्राजील का सांबा संगीत कैसे बजता है, ताला कैसे खुलता है, माया सभ्यता की लिखाई कैसे पढ़ी जाती है, वो हर चीज में दिलचस्पी लेते थे। सीखना और खोजना ही उनके लिए सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स था।
और दूसरी चीज जो बहुत स्ट्राइक करती है, वो है उनकी बौद्धिक ईमानदारी। उनका वो कोट, पहला सिद्धांत ये है कि आपको खुद को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए।
और आप ही वो इंसान हैं जिसे मूर्ख बनाना सबसे आसान है।
ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी।
हाँ।
ये उनके काम करने का तरीका था।
मतलब हमेशा अपने आइडियाज पर शक करो, उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करो, सिर्फ वो सबूत मत देखो जो तुम्हारी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, उन पर ध्यान दो जो उसे चैलेंज करते हैं। वो मानते थे कि खुद को धोखा देना ही साइंटिफिक प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है।
और यही कार्गो कल्ट साइंस के पीछे का आइडिया था।
बिल्कुल,
कि साइंस सिर्फ बाहरी रस्मों को निभाना नहीं है, उसके पीछे सच्ची समझ और ईमानदारी होनी चाहिए।
ये जानना बनाम समझना वाला फर्क भी बहुत गहरा है, जो पिता से सीखा था।
हाँ, और जो उन्होंने ब्राजील में पढ़ाते हुए देखा, छात्र मुश्किल फॉर्मूले रट लेते थे लेकिन उनका मतलब या इस्तेमाल नहीं जानते थे। फाइनमैन सतही ज्ञान के सख्त खिलाफ थे।
वो गहरी सहज समझ पर जोर देते थे,
और इसी से जुड़ी थी उनकी, कह सकते हैं, एंटी अथॉरिटेरियन सोच। नियमों को चुनौती देना।
हाँ।
चाहे वो तिजोरी खोलना हो, या बिल्ली का नक्शा पूछना, या चाय में क्रीम और नींबू मांगना, ये सब कहीं ना कहीं स्थापित तरीकों पर सवाल उठाना था।
उनका मानना था कि किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि कोई बड़ा आदमी कह रहा है या हमेशा से होता आया है, खुद जांचो, परखो, समझो, वेरीफाई करो।
और इन सब के पीछे क्या था? शायद वो खोज का आनंद, जॉय ऑफ फाइंडिंग थिंग्स आउट।
एग्जैक्टली। उनके लिए साइंस या सीखना कोई बोझ नहीं था, ये खेल था, एक रोमांच था। नई चीजें पता लगाने में उन्हें सच में मजा आता था, एक किक मिलता था। इनाम या पहचान से ज्यादा ये अंदरूनी खुशी जरूरी थी।
उनकी फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग भी इसी से जुड़ी है।
हाँ, किसी भी प्रॉब्लम को उसके सबसे बेसिक लेवल पर ले जाकर समझना, जैसे बचपन में रेडियो ठीक करना, या जब उन्होंने बाद में ड्राइंग सीखी तो सिर्फ नकल नहीं की बल्कि रोशनी, रेखा, बनावट के मूल सिद्धांतों को समझा।
और एक और बात, ज्ञान और अनुभव की एकता। वो मानते थे कि ज्ञान अलग अलग डिब्बों में बंद नहीं है।
सही कहा। आर्ट, म्यूजिक, साइंस सब जुड़े हुए हैं। दुनिया को समझने के अलग अलग रास्ते हैं। ब्राजील में सांबा स्कूल में ड्रम बजाना उनके लिए सिर्फ टाइम पास नहीं था।
वो क्या था फिर?
वो लय को, कल्चर को महसूस करने का, समझने का तरीका था। उनका मानना था कि किसी चीज को सच में जानना है तो उसमें डूबना पड़ता है, उसे जीना पड़ता है। सिर्फ पढ़ना या सुनना काफी नहीं।
फाइनमैन के जीवन में कुछ खास मोड़ आए होंगे जिन्होंने उनकी दिशा बदल दी। तीन सबसे अहम मोड़ कौन से माने जा सकते हैं?
मेरे ख्याल से पहला तो उनके पिता का प्रभाव ही था, वो बचपन की सीख।
हाँ, कि नाम जानने से ज्यादा जरूरी है समझना, सवाल पूछना, क्यों और कैसे। इसने उन्हें सोचने का एक तरीका दिया, है ना?
बिल्कुल, एक वैज्ञानिक नजरिया। दूसरा बड़ा मोड़ वो कॉर्नेल वाली घटना, डगमगाती प्लेट,
वो बर्नआउट के बाद।
हाँ, जब वो वैज्ञानिक और शायद भावनात्मक रूप से भी एक ठहराव महसूस कर रहे थे। अपनी पहली पत्नी आरलाइन की बीमारी और मृत्यु का भी असर रहा होगा। उस प्लेट की फिजिक्स को खेल खेल में सुलझाने से उन्हें वो खोया हुआ मजा वापस मिला।
ये दिखाता है कि उनके लिए खोज का आनंद कितना जरूरी था।
बहुत जरूरी, वही उनकी असली प्रेरणा थी। उसी घटना ने वो चिंगारी फिर से जलाई जो उन्हें नोबेल तक ले गई। ये अंदरूनी मोटिवेशन की ताकत है।
और तीसरा मोड़?
तीसरा मैं कहूंगा ब्राजील का अनुभव, जब उन्होंने वहां देखा कि छात्र कैसे सिर्फ रट रहे हैं बिना समझे।
वो कार्गो कल्ट वाली बात।
हाँ, उस अनुभव ने रटने वाली शिक्षा के प्रति उनकी आलोचना को और पक्का किया। बौद्धिक ईमानदारी और असली समझ पर आधारित शिक्षा के उनके विचारों को बल मिला और इसी से बाद में उनका वो मशहूर कार्गो कल्ट साइंस लेक्चर निकला।
तो ये तीन पिता का प्रभाव, डगमगाती प्लेट और ब्राजील का अनुभव, ये उनके जीवन दर्शन के मील के पत्थर थे,
कह सकते हैं।
फाइनमैन की कहानी में सिर्फ साइंस या दिमागी कसरत नहीं है, इसमें हम सबके लिए कुछ मानवीय सबक भी हैं।
उनकी वो जिज्ञासा, वो तो किसी में भी हो सकती है ना?
बिल्कुल। सीखना किसी उम्र या प्रोफेशन तक सीमित नहीं है, और कॉर्नेल वाला दौर ये भी दिखाता है कि कैसे बाहरी उम्मीदों का बोझ हमें दबा सकता है। जब उन्होंने सिर्फ मजे के लिए सोचना शुरू किया तभी उनका बेस्ट काम सामने आया।
ये संतुलन साधना वाकई मुश्किल है, और उनकी बौद्धिक ईमानदारी, खुद को मूर्ख मत बनाओ, ये तो जीवन के हर पहलू में लागू होती है। हाँ, क्या हम अपनी मान्यताओं को सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि वो आरामदायक हैं, या हम सच में उन्हें परखते हैं?
और उनका वो रवैया नियमों को चुनौती देना। उनकी पत्नी अरलाइन का वो सवाल याद आता है, दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसकी तुम्हें क्या परवाह।
व्हाट डू यू केयर व्हाट अदर पीपल थिंक, ये सिर्फ एक सवाल नहीं, एक जीने का तरीका था। अपनी अंदर की आवाज सुनना, बाहरी दबाव से मुक्त होना। अरलाइन की कहानी खुद बहुत मार्मिक है। उनका प्यार, उनकी बीमारी, फाइनमैन का साथ देना, लॉस अलामोस के उस तनाव भरे माहौल में उनकी मृत्यु, ये सब फाइनमैन की जीनियस के पीछे के इंसान को दिखाता है।
और ये भी कि खुशी अक्सर मंजिल में नहीं, सफर में होती है।
बिल्कुल,
प्रोसेस को एंजॉय करना। तो अगर इस पूरी बातचीत से, फाइनमैन के जीवन से तीन सबसे जरूरी बातें लेकर जानी हो तो वो क्या होंगी? पहली, कोई भावनात्मक सीख।
मेरे लिए तो वो अरलाइन वाला सवाल ही है, दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसकी तुम्हें क्या परवाह। ये हमें बाहरी शोर से ऊपर उठकर अपने अंदर की सच्चाई और यकीन के साथ जीने की हिम्मत देता है, प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी की ताकत।
दूसरी, एक बौद्धिक सीख।
वो है किसी चीज का नाम जानना और किसी चीज को सच में जानना के बीच का फर्क। सच्ची समझ रटने से नहीं आती, वो आती है सवाल पूछने से, प्रयोग करने से, फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचने से। ये कार्गो कल्ट सोच के बिल्कुल उलट है, ज्ञान सिर्फ दिखावा नहीं है।
और तीसरे, एक ऐसी सीख जो शायद हम सब अपने जीवन में उतार सकें।
वो है अपने अंदर वो बच्चे जैसी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखना, खुशी खुशी सीखना, और साथ ही बिना किसी लाग लपेट के बौद्धिक ईमानदारी बरतना, मतलब खुद को मूर्ख बनाने से बचना। फाइनमैन की कहानी ये दिखाती है कि जीनियस होना सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, ये बहुत हद तक दुनिया को देखने, उससे सवाल पूछने और उसके साथ खेलने का एक नजरिया है।
और ये नजरिया कोई भी अपना सकता है।
हाँ बिल्कुल।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।